ಗೋಪಿಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿಯ ಗೋಪಿಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿಯ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಎಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೀ ಪ್ರೇಮ್ ಸೆ ಕಹೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ್ ರಾಧಾ ಕುಂಡ್ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕೀ ಬ್ರಜಭೂಮಿ ವೃಂದಾವನ್ ಧಾಮ್ ಕೀಜ ಮಥುರಾ ದ್ವಾರಕಾ ಧಾಮ್ ಕೀಜ ಮಾಯಾಪುರ ನವದೀಪ್ ಧಾಮ್ ಕೀಜ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಧಾಮ್ ಕೀಜ ಗಂಗಾ ಮಾಯ ಕೀಜ ಯಮುನಾ ಮಾಯ ಕೀಜ ತುಳಸಿ ದೇವಿ ಕೀಜ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ಕೀಜ ಭಾಗವತ್ ಧರ್ಮ ಕೀಜ हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद पांचवा अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 9 से लेके 12 तक का है। हरे कृष्णा। शिष्या इमे भगवता परितः पठन्ति गायन्ति सामा सहरस्यम् अजस्त्रम् इशम् उष्मत शिखा विलूलिता सुमनः अभिवृष्टि सर्वे भजन्ति ऋषिगणा इवा वेदशाखा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जाए। शिष्याय मे भगवता परिता पतन्ति, गायन्ति सामा सरहस्यमजश्रमीशम् युष्मक्चिका विलुलिता सुमनोऽभिवृष्टि सर्वे भजन्त्या ऋषिगणा इव वेदशाखा। शिष्या इमे भगवता परिता पतन्ति, गायन्ति सामा सरहस्यमजश्रमीशम् युष्मच्चिका विलुलिता सुमनोऽभिवृष्टि सर्वे भजन्त्या ऋषिगणा इव वेदशाखा। श शिष्यायमे भगवता परितापतन्ति गायन्ति सामसरहस्यमजश्रमीशम् युष्मच्चिका विलुलिता सुमनोऽभिवृष्टि सर्वे भजन्त्या ऋषिगणा इव वेदशाखा शिष्या इमे भगवता परिता पठन्ति गायन्ति सामसरहस्यमजस्रमीशम् युष्मच्चिता कविलुला सर्वे भजन्त्या गुणा. Any Vaishnavis, Matajis, आपको try करना है? शिष्या इमे भगवता परिता पठन्ति गायन्ति सामसरहस्यम् सर्वे भजन्ति शिष्या शिष्य इमे ये भगवता पूज्य के परितः चारों ओर से घेरे हुए पठन्ति सुना रहे हैं गायन्ति गायन कर रहे हैं सामा सामवेद सरहस्यम रहस्य युक्त अजस्त्रम निरंतर ईशम ईश्वर को युष्मत तुम्हारी शिका छोटी से विलुलिता गिरे हुए सुमनहा पुष्पों की अभिवृष्टि वृष्टि सर्वे समस्त भजंती भोगते हैं ऋषिगणा ऋषि मुनि इवा सदृशः वेदशाखा वैदिक शास्त्रों की शाखाएं. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. पूर्व चित्ती का अनुगमन करने वाले भौरों को देखकर महाराज अग्निद्र बोले, हे स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे शरीर को घेरे हुए ये भौरें अपने पूज्य गुरु को घेरे हुए शिष्य हैं. वे सामवेद तथा उपनिषद के मंत्रों का निरंतर गायन कर रहे हैं और इस प्रकार तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं. जैसे ऋषिगण वैदिक शास्त्रों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, ये भौरे तुम्हारी छोटी से जड़ने वाले पुष्पों का आनंद ले रहे हैं. इस श्लोक का कोई तात्पर्य नहीं है. 10, 11 और 12 श्लोकों को भी आज हमें पढ़ना है, तो मैं सिर्फ अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि हद तक हम तात्पर्य पढ़ सकते. 10वां है, हे ब्राह्मण, मुझे तो तुम्हारे नुपुरों की झंकार की सुनाई पड़ती है. ऐसा लगता है उनके अंदर तीतर पक्षी चक रहे हैं. यद्यपि मैं उनके रूपों को नहीं देख रहा किंतु मैं सुन रहा हूँ कि किस प्रकार चक रहे हैं। जब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मानो वे कदंब के पुष्पों का सुंदर रंग लिए हो। तुम्हारी कमर में जाज्वल्यमान अंगारों की मेखला पड़ी हुई है। दरअसल ऐसा लगता है कि तुम वस्त्र धारण करना भूल गए हो। तब महाराज अग्निद्र ने पूर्व चित्ति के उभरे हुए राजों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ये ब्राह्मण, तुम्हारी कमर अत्यंत पतली है किंतु फिर भी तुम कष्ट सह कर इन दोनों सींगों को धारण कर रहे हो जिन पर मेरे नेत्र अटक गए हैं। इन दोनों सुंदर सींगों के अंदर क्या भरा है? तुमने इनके ऊपर सुगंधित लाल लाल चूर्ण छिड़क रहा है मानो अरुणोदय का सूर्य हो। हे भगवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा सुगंधित चूर्ण कहाँ से मिला जो मेरे आश्रम को सुरभित कर रहा है? हे मित्रवर, क्या तुम मुझे अपना निवास स्थान दिखा सकते हो? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस उस स्थान के निवासियों को तुम्हारे उन्नत उरुजों के समान अद्भुत शारीरिक अंग किस प्रकार प्राप्त हुए जो मुझ जैसे देखने वाले के मन तथा नेत्रों को उद्वेलित कर रहे हैं। उनकी मधुर वाणी तथा मृद मुस्कान से मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि उनके मुखारविंद में अमृत बसता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आज के श्रीमद् भागवतम कथा। आप लोग ज़्यादातर अतिथिगण हमारे, ये तो रोज का कार्य है भागवतम, तो कुछ ऐसे विषय सुनकर आप होंगे क्या चल रहा है, तो इसके लिए संक्षेप में आप मैं बता रहा हूँ क्या चल रहा है, कौन सा संदर्भ है। ये जो लिखा है ये श्लोक पांचवें स्कंद में आता है श्रीमद् भागवतम। इसमें भगवान के भक्तों का उनके साथ किस तरह रिश्ता होता है, कैसे वो ऐसे कठिन समस्याओं को कैसे पार करते हैं, भगवान के लिए कैसे प्रेम जागता है, जैसे ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज ऐसे लोगों की कथा। तो आज का संदर्भ ऐसा है, इसका शीर्षक है महाराज अग्निद्र का चरित्र। तो राजा प्रियव्रत अपने राज्य पालन के बाद उन्होंने फिर वैराग्य जीवन स्वीकार किया। उसके बाद अपने बेटे को निवृत्त किया कि आज से बाद तुम अपना राज्य चलाओ। तो अग्निद्र राजा अपने वंशज को बढ़ाने के लिए एक ऐसे स्त्री की खोज में है। तो उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया, कौन होगा वो, यानी एक पुरुष एक ऐसे पत्नी की खोज में होता है ना, विवाह होता है फिर वंशज। तो उस तरह से ये उन दिनों की बात है, आधुनिक बात अलग है, छोड़ दो आजकल की बात, लेकिन उन दिनों में संस्कार सभ्यता इतनी। तो फिर भी वो गए तो ब्रह्मा जी ने वो मंदरा पर्वत चले गए तपस्या करने के लिए। और ऐसे तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते कभी कभी आंखें थोड़ा खुल जाते हैं या आंखें बंद रहते हैं। तो ऐसे समय में ब्रह्मा जी ने एक ऐसे अप्सरा को भेजा। तो ये जो भी मैंने श्लोक पढ़ा, अग्निद्र राजा देखकर पूरी तरह से मोहित हो जाता है। इस संसार में स्त्री और पुरुष का आकर्षण के बारे में ज्यादा विवरण करने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है ना किस तरह से उस आकर्षण से क्या क्या हो सकता है, अच्छा होता है बुरा होता है वो बात अलग है, लेकिन ये आकर्षण बहुत ही तीव्र होता है। इतना तीव्र होता है कि बड़े बड़े गंधर्व ऋषिगण मुनि देवतागण राजा ऐसे लोगों का पतन हो जाता। पतन का अर्थ है वो अपने मार्ग से गिर जाते हैं, क्योंकि स्त्री का रूप जो बनाया गया है, देखो आसन में बैठकर ऐसे विषयों को बात करना, कई लोग बोलते हैं अरे ये सब विषय क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ धार्मिक विषय होना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है, सच को जब बताना है उसमें कभी रुकना नहीं चाहिए। तो आचार्य गण ने जो कुछ दिया है विश्व को हम दोहरा रहे हैं, और इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो इस संसार में हम अनुभव कर रहे हैं, वो भागवतम में पहले लिखा है। तो ये विषय थोड़ा सा ऐसे विचलित करेगा, ये क्या पुरुष और स्त्री के बारे में बता रहे हैं, स्त्री का विवरण कर रहे हैं, लेकिन ये भागवतम में है। तो अग्निद्र इतना मोहित हो जाता है, जब कोई मोहित हो जाता है, मोहित का अर्थ है इतना आकर्षण उसका बढ़ जाता है, तो आकर्षण बढ़ने के बाद तुरंत मन में क्या विचार आता है, मैं इसको किस तरह से भोग करूं। तो भोगने की प्रवृत्ति जब बढ़ जाती है तो आदमी का बुद्धि स्मरण वो पूरा सा विचलित हो जाता है। ऐसे विचलित में वो क्या बोलता है क्या देखता है ऐसे बहुत अजीब सा लगेगा। अभी महाराज अग्निद्र देख रहा है कि ये पूर्वचित नाम की अप्सरा आई है, लेकिन उसके सुंदरता से इतना मोहित हो गया वो, उसको कुछ और ही दिखाई दे रहा है और कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आदमी पागल हो गया है। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई राजा है, विद्वान है। तो ये है स्त्री आकर्षण किस तरह से प्रभावित कर सकता है एक पुरुष को। इसके लिए समाज में आज के दिन अगर हम ऐसे बोलोगे तो बोले अरे तुम पागल हो, इसलिए मंदिर में एक विभाग किया जाता है, स्त्रियों को उस तरफ पुरुषों को इस तरफ, साथ में नहीं मिलेंगे। इसमें इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों को कुछ नीचा बताया जाता है, बस ये सच्चाई है कि पुरुष स्त्री आकर्षण इतना गंभीर होता है, इसके लिए ये सब किया जाता है ना, विशेषकर मंदिर में आते समय। जैसे बहुत ही कहीं ऐसे मंदिरों में ड्रेस के बारे में भी एक रूल होता है कि आप मंदिर आ रही हैं तो फिर आपको ऐसे ड्रेस पहन के आना पड़ेगा। हाँ, हमारे वैदिक सभ्यता है कि स्त्रियों के जो बाल होते हैं बहुत आकर्षित करते हैं पुरुष को, तो कहा जाता है कि आप ऐसे पहन लो। तो अपने एक स्त्री भी समझती है कि हाँ, मेरा जो शरीर है मैं किसी को विचलित कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तो बस स्वतंत्र हूँ, मेरे मन में आया मैं जो करूँगी, अगर कोई किसी को कुछ तकलीफ हो रहा है तो उसकी बात। लेकिन सच है कि है, एक ऐसा भी एक समाज होता था जहाँ पे अभी भी कई घर में आज के सुनेंगे तो बोले अरे क्या है सब, ऐसे भी कई घर हैं जहाँ पे पुरुष कभी भी घर के अपने पत्नी को छोड़कर या अपने माँ के साथ कुछ हद तक दूसरे हर एक स्त्री को डायरेक्टली मुंह में नहीं देखेगी, वो नीचे देख के बात करेगी, डायरेक्टली देखेगी नहीं। अभी भी है, लेकिन आज के दिन हम बोलेंगे तो हमको क्या बोलेंगे लोग, तुम पागल हो। क्यों बताया गया है? खास करके एक स्त्री के चेहरे में उनका आंखें जो होती है, देयर आईज वेरी पावरफुल। अगर कोई ज्यादा आंखों में देख के बात करेगा तो याद रखो कि अगर वो शुद्ध नहीं है अपनी चेतना से, उसके चेतना में जो नहीं होना चाहिए वैसे विचार आ जाएगी। ये सच है। आपको ये मालूम होगा, ये रामायण में जब सीता का अपहरण हुआ, उसके अपहरण होने के बाद राम और लक्ष्मण ढूंढते गए, तो ढूंढते समय एक ऐसे जगह पे किष्किंधा आने से पहले तो राम को कुछ ऐसे आभूषण मिले, कुछ वस्त्र मिले। उन्होंने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण अरे ये तो सीता की है। तो उसने कुंडल दिखाए तो पूछा, तुम पहचानते हो कुंडल को? लक्ष्मण ने कहा नहीं। अगर आप सीता के जो पद कमल में जो उंगलियों में डालते हैं ना, वो अगर आप दिखाओगे तो मैं पहचान लूंगा कौन, क्योंकि लक्ष्मण ने जब भी सीता से बात किया है कहां देखकर बात किया, उसने सीधा पैर देखकर बात की। तो ऐसे कहीं ऐसे विषय आते हैं। तो आज का ये जो विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर यहाँ पे हम सुनेंगे ये पूर्व चित्त की सुंदरता को देखकर, वो बोलता है भौरे ऐसे घूम रहे हैं जैसे तुम्हारे शिष्य है, ये क्या बोल रहा है? अभी हम भी देखेंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, लेकिन इसी तरह से मोहित हुआ है कि उसके स्मरण शक्ति, उसकी बुद्धि सब भ्रष्ट हो गई। तो ऐसे कुछ बोल रहा है अग्नित्र राज, तुम्हारे शरीर के वो अंग ये अंग, तुम्हारे आंखों के ये जो क्या बोलते हैं हिंदी में इसको आईब्रोज, तुम्हारे आंखें ये क्या है, ये एक धनुष है, ये एक तार है, ऐसे सब क्या बोल रहे हैं कि ये बस इसका सिर्फ यही है कि भगवद गीता में जैसे बताया गया है ना, जैसे कोई ध्यान करता है किस विषय के ऊपर, ध्यायते वो विषयान पुंसान संगात संजायते कामा, जैसे ही कोई विषय भोग करने के विषय सामने आ जाता है तो एक आसक्ति होती है, फिर भोग करना चाहता है, फिर भोग करते समय अगर नहीं कर सका तो क्रोधाद् भवति सम्मोहा, क्रोध आ जाता है क्योंकि भोग नहीं कर सकता है, तो उसके तुरंत बाद आता है सम्मोहा। सम्मोहा यानी वो खुद को नहीं पहचानता है, कौन हूँ मैं, ये कौन है, किस जगह पे हूँ मैं, कहाँ क्या, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी स्मरण शक्ति खो जाती है, उसकी बुद्धि खो जाती है। ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आता है विषयों को। तो हर एक ऐसे इंद्रिया है, भगवद गीता में लिखा है, अगर बहुत बड़ा एक तपस्या के मार्ग में भी लगा हुआ है, अगर उसका एक भी इंद्रिया, एक भी इंद्रिया ऐसे विषयों में लग जाता है, तो एक ऐसा उदाहरण दिया जैसे समुन्द्र के बीच में एक नाव होता है, हवा से कैसे वो नाव को पूरा तूफान खींच के ले जाता है, उस तरह से एक आदमी। अब ये दोनों तरफ से है, पुरुष के लिए स्त्री आकर्षित है, स्त्री के लिए पुरुष आकर्षित है, ये ऐसे संसार में बनाया गया, तो पूरा उसका पतन हो जाता है। तो वैसे कहीं ऐसे शास्त्र में तो ऐसे भी लिखा है कि पुरुष मक्खन की तरह है और स्त्री अग्नि की तरह है। अग्नि के सामने मक्खन क्या हो जाता है? नानव अग्नि प्रमाद नामा घृता खुम्बा समापुमान सुतम अपीरता जयद अन्यदायावदर्थ कृत। इसका अर्थ है कि एक स्त्री एक अग्नि की तरह है, एक पुरुष एक मक्खन की तरह है, इसलिए पुरुष अगर जरूरत नहीं है तो ज्यादा स्त्री के संग में कुछ काम की बात है करेगा, नहीं तो वो ज्यादा विषयों में नहीं। पत्नी की बात अलग है, दूसरी लोगों से किससे भी जरूरत है उतने ही संपर्क में आएगा। ऐसे भी लिखा है कि इतना तीरु लिखा है शास्त्र में भी, एक अकेले में अपने बहन और माँ के साथ भी नहीं बैठना चाहिए आज के आधुनिक जीवन में अगर ऐसे विषयों को, लेकिन क्योंकि वो इतना प्रभावित हो सकता है, कभी कभी कुछ भी ऐसे हो सकता है, इसलिए सावधान शास्त्र बताते। अभी समय बदल गया है, हम लोग अभी लड़के लड़कियां फ्रीली मिलते हैं, लेकिन हम उसका जो एक सार है इसको नहीं भूलते हैं कि हाँ ये आकर्षण बहुत तीव्र है, ठीक है। तो इसलिए शास्त्र में से कनेक ऐसे आता है कि ऐसे एक उदाहरण दिया गया, लेकिन हम लोग संक्षेप में ये बता सकते हैं कि कई बार ऐसे पूछा जाता है क्या होता है, लेकिन क्या बुढ़ापे में चला जाता है क्या ये जो काम भावना है, जैसे उम्र बढ़ते जाता है। तो ऐसा एक राजा ने अपने एक मंत्री से पूछा, क्या ठीक है अभी जो है काम भावना है मेरे शरीर ऐसे, लेकिन बाद में तो चला जाएगा ना बुढ़ापा, तो फिर जब है तब तक ठीक है। बोलते नहीं ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है, ये भावना जब तक पूरी तरह से एक भक्त भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन जाता, जिसमें उसके हृदय में काम भावना पूरी तरह से गई है, सिर्फ प्रेम जाग गया, तब तक ये वासना ये काम क्रोध रहेगा। तो ये राजा को ये समझाने के लिए कहते कल आप ऐसे जगह आ जाओ मैं आपको बताता हूं। तो राजा बोला ठीक है, लेकिन आप साथ में अपना जो एक लड़की है 18 साल की कन्या है उसको भी ले आओ। तो राजा ने उसको भी साथ में ले आया। तो ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ पे एक 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति अपने मृत्यु के शैया में है और वहाँ लेके गए। मंत्री ने लेके गए, अंदर प्रवेश किया, उसके बाद राजा प्रवेश किया, उसके बाद कौन आया? उसकी कन्या आई। फिर लोग कुछ देर बैठे, फिर उसके बाद चले गए। तो मंत्री ने राजा से पूछा, देखा तुमने मृत्यु के शैया में है, तुम प्रवेश किया, तुम्हें देखा, मुझे देखा, लेकिन उसके बाद उसका नजर किधर गया? उसकी नजर सिर्फ साथ में जो आई है लड़की उसके ऊपर ही रुक गया। तो ये है आकर्षण, इतना तीव्र आकर्षण। इसलिए हम जो संसार में आजकल देखते हैं, कई बार बोलते हैं क्या है उसमें, लेकिन देखा जाए तो इस आकर्षण से ठीक है, आकर्षण है, लेकिन कितने सारे बुरे हो जाते हैं, ज्यादा करके बहुत सारे मर्डर होते हैं, उसका कारण क्या होता है? आकर्षण का ही होता है ना, अगर तू मेरी नहीं है तो तू फिर किसी की नहीं, तो क्योंकि भोग करने नहीं मिला, इतना क्रोध हुआ, कभी कभी एसिड फेंक देते हैं, सुना है सब। ये ऐसे मत सोचना कि ये सिर्फ है, जब वो काम भावना इतना उत्तेजित होती है कि आदमी का बुद्धि क्या करेगा उसको नहीं, उसके बाद में पता चलता है कि मेरे से क्या गलती होगी। तो ऐसे ये तो सिर्फ एक इंद्रिया का है, लेकिन बताया जाता है कि जब स्त्री पुरुष के आकर्षण में है उसमें सब इंद्रियां उत्तेज हो जाती थी, हमारे जो आंख है, नाक है, कान है, जीवा है, स्पर्श है। भागवत में बताया जाता है इसके आकर्षण से संबंधित, आपको जंगल में हाथी को कैसे पकड़ा जाता है मालूम है? अभी हाथी को पकड़ना इतना आसान नहीं है ना, हाथी सच अ स्ट्रांग एनिमल। तो एक जगह पे हाथीनी को ऐसे खड़ा किया जाता है, वो शिकारी जानता है कैसे, और हाथीनी के बाजू में ऐसे बहुत बड़ा एक खड्डा बनाया जाता है, और खड्डे के ऊपर थोड़ा सा ऐसे ऊपर से घास जाता है कि बाहर से लगता नहीं है कि खड्डा है, और जो हाथी को पकड़ना है वो हाथी को किसी तरह से उस दिशा में ले आते। जैसे हाथी देखता है उसके स्पर्श करने की इंद्रियां इतना उत्तेजित हो जाती है, वो सिर्फ दौड़ते आता है बस खाली स्पर्श करने के लिए, और जैसे स्पर्श करते समय हाथीनी को थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमाया जाता है और वो गिर जा, किधर गिर जाते हैं, खड्डे में। सो दिस इज द पावर शास्त्र स्पीक्स अगेन एंड अगेन। कहीं हमने कथा सुना है कि विश्वामित्र मुनि के बारे में, तो हमने इतने बड़े योगी इतने तपस्या कर रहे थे और उन्होंने सिर्फ पहले उनके आंखें बंद थे लेकिन सिर्फ सुना क्या, सिर्फ कंगन की आवाज़, नुपुर की आवाज़ खुल गया उनका आंख। उसके बाद पूरे अपने तपस्या को छोड़कर वो फिर मेनका के साथ, फिर मेनका से उनके संबंध से शकुंतला का जन्म हुआ। तो ऐसे सिर्फ बताने के लिए कि शास्त्र ये भगवान ने निश्चित बनाया है ये आकर्षण, क्योंकि अगर ये आकर्षण नहीं होता तो फिर संतान कैसे उत्पन्न होगा, क्योंकि वो एक आकर्षण है, उससे बाद में संतान होते हैं, तो ये भी तो ज़रूरत है, ये भी तो भगवान के ही ये कार्य है। तो जो इस समझ से एक रिश्ता रखता है तो फिर भगवान गीता में कहते हैं कि वो धर्म के अनुसार है। लेकिन आधुनिक जीवन में हम कोई उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ उसमें से जो इंद्र तृप्ति करने को मिलता है सिर्फ उसे स्वीकार करते, उत्तरदायित्व नहीं करते। इसलिए जो कुछ आसपास दिखाई देता है सिर्फ यही बोलता है कि हमने बहुत प्रगति किया है तो आज की दुनिया में ये सब चलता है, लेकिन ज़रूर चलता है लेकिन उसका परिणाम भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो परिणाम स्वीकार करना यानी आप देखते हैं कि आप लोगों को आश्चर्यचकित होगा कि हमारे देश में हर साल कुछ 15 लाख गर्भपात होता है। आप लोग लगे अरे गर्भपात, ये तो सिर्फ जो रिपोर्ट दिया हुआ है, ये क्यों होता है, क्योंकि बस हम नहीं चाहते, गलती हो गया, मिस्टेक से हो गया, हम नहीं चाहते इसको। लेकिन गर्भपात तो बहुत बड़ा एक पाप है, तो जैसे पाप बढ़ते जाती हैं फिर उसका तो जो कोई परिणाम है उसे हम सबको भुगतना पड़ता है। तो ये जीवन का रहस्य को यहाँ बताया गया है। तो एक ऐसे श्लोक अच्छा आता है कि सिर्फ हमारे को समझाने के लिए कि है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो परस्पर जो ये संबंध है, यहाँ पे श्लोक में ऐसे बताया कि यन्मैथुनादि ग्रहमेधि सुखम हि तुच्छम, कुणमयनेन करयोरिव दुःख दुःखम, तृप्यन्ति नेह कृपना बहु दुःख भाजा, कंडोति वन मनसिजम विषहेतदीरा। तो प्रहलाद महाराज कहते इतना क्या इसको बहुत बड़ा कर दिया है कि जो बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा जाता है, फिल्में बनती है, कथा ड्रामा में सिर्फ इसको ज़्यादा सा सेंटर दिया जाता है। सब एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखते हैं कि स्त्री के रूप में सामने किया जाता है, कुछ भी फैन भी, अगर फैन का भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो भी एक मॉडल को स्त्री को देख, क्यों, क्योंकि इतना उसमें पावर है कि लोग वो देख कर खरीदते हैं कि चलो फैन, ऐसा लगता है कि ये एक, क्योंकि जानते हैं लोगों के मन में साइकोलॉजी क्या है। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो आकर्षण है ये सिर्फ एक शरीर में एक तरह जब खुजली आती है तो किस तरह से हम खुजाते हैं, है ना, लेकिन अगर सिर्फ खुजाते हैं तो खुजली रुक जाती है, थोड़े देर के लिए रुक जाती है, लेकिन उसके बाद में ऐसा लगता है और खुजाओ, फिर लगता है और खुजाओ, लेकिन जब तक वो खुजली आती रहेगी तब तक जाते रहेंगे, लेकिन क्या होगा उसका परिणाम? घाव हो जाएगा। जब घाव हो जाएगा तो फिर उसमें सुख नहीं है। तो हम कैसे समझे? अब कहीं आप समाज में अभी हम देख रहे हैं कि कई बार एक पति और पत्नी का रिश्ता टूट जाता है, उसका एक कारण यही होता है, पति किधर और किसी से आकर्षित होता है, फिर घर टूट जाते हैं, बच्चे अलग होते हैं, डिवोर्स होता है, फिर वो कोई ऐसे हालत में कोई नशा करता है और वो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए, पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे हमने देखा है अजमेर की कथा में, अजमेर में सिर्फ एक बार देखा और उसके बाद वो ब्राह्मण घर का था, लेकिन उसके सब चारित्र बिगड़ गए सिर्फ एक दृश्य से, वो सब ऐसे पाप करे करने लगा। तो यहाँ कि इसमें इतना दुख है, कृपना बहु दुख भाजा कंडुत्वम मनुषिजम विषयेत धीरा। लेकिन जो धीरज धीर पुरुष होता है वो इस ज्ञान से समझता है कि ये तो सिर्फ बस वही है, उस तरह का एक सुख है, इसके लिए ज़्यादा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है, और धीर बनकर वो इस तरह के प्रभाव से वो दूर हो जाता है। तो संक्षेप में ऐसा है कि ये जो आकर्षण है, बड़े बड़े संत मुनि जब होते हैं, इसका सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा इससे बच सकता है, और वो है जो भगवान का, जब वो शुद्ध भक्त बन जाता है। शुद्ध भक्त बनने के बाद उसमें इतना प्रेम होता है भगवान के लिए कि वो एक हर एक जीव को किस तरह देखता है, हाँ, और उसमें और जो शुद्ध नहीं है उसमें बहुत अंतर। सिर्फ वही है जो इससे बच सकता है। तो वैसे आज बहुत ही एक पावन दिन है, उससे संबंधित एक ऐसी एक कथा आती है। हमारे देश में चार संप्रदाय है, उसमें से एक संप्रदाय संस्थापक आचार्य है रामानुजाचार्य, उनका आज आविर्भाव दिन है। तो उनके एक ऐसे लीला में दक्षिण भारत में तिरुपति श्रीरंगम मंदिर में वो मेन आचार्य, आज भी उनका जो परंपरा बहुत अच्छे से चल रहा है, वैष्णव परंपरा है। तो एक बार ऐसे हुआ कि लक्ष्मी नारायण का एक जुलूस जा रहा है श्रीरंगम मंदिर के बाहर, और बड़े बड़े ब्राह्मण लोग सब बहुत अच्छे लोग मंत्र उच्चार करते जा रहे हैं, पूरे जितने भी घर के रास्ते में सब लोगों का आकर्षण है भगवान के इस जुलूस में। इतना श्रृंगार किया हुआ, कीर्तन मंत्र फूलों से बज, सब लोग सुसज्जित। तो रामानुजाचार्य का नज़र एक रास्ते में एक और चला जाता है, तो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर स्त्री है और उसके साथ में एक बहुत ही अच्छा युवक खड़ा है और वो छतरी लेके खड़ा है उसके ऊपर, और वो स्त्री जब अपना मुंह फेर लेती उधर जाती तो छतरी उधर जाके रखता है। उसके शरीर पे वो सूरज का किरण पड़ने नहीं देता और उसके मुख से पसीने से ऐसे कुछ बूंद निकल रहा है, तो जाकर उसको ऐसे पूरे बाजार में सब लोगों का आकर्षण भगवान की ओर है और इसका आकर्षण है उस स्त्री के ऊपर है। तो रामानुजाचार्य ऐसा क्या है, तो बोलते उसको बुलाओ। तो उसको बुलाते हो तो क्या हो रहा है तुम्हें, इतने सब लोग देख रहे हैं, तुमको नहीं मालूम पड़ रहा है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या, ऐसा क्या है उस स्त्री में इतना आकर्षित क्या है? तो बोलते उसकी आंखें इतना खूबसूरत है कि मुझे लगता है कि इस संसार में उसके आंखों जैसा कुछ है ही नहीं। तो रामानुजाचार्य से पूछते हैं, अगर मैं उससे ज्यादा खूबसूरत मैं तुझे कोई दिखाऊं तो क्या तुम इस आकर्षण से मुक्त हो सकते हो? मतलब जरूर, अगर इससे और कुछ हो सकता है, इससे भी ज्यादा, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ हो सकता, मेरे लिए तो इससे ज्यादा कोई खूबसूरत है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तुम कल सुबह तुम श्रीरंगम मंदिर में आ जान। तो रामानुजाचार्य ने उस व्यक्ति को, उसका नाम था धनुर्धर, हाँ, तो उसको बुलाया। तो फिर वो सुबह मंगल आरती के समय रामानुजाचार्य ने, जो श्रीरंगम मंदिर गए उनको मालूम होगा मंदिर का जो भाग बहुत अंदर रहता, तो उसको ऐसे अंदर लेके, तभी आरती चल रही थी और आरती भगवान का दिया भगवान के ऐसे शरीर पे घुमाते हुए शरीर के मुख पर आए तो धनुर्धर ने भगवान का मुख देखा और उसने उनकी आंखें देखी और उस आंखें देखकर इतना आकर्षित हो गया। हमें सबको आश्चर्य होगा, अरे तो हम भी देखते हैं आंखें यार, हम तो इतना आकर्षित नहीं होते हैं भगवान का रूप से। ये रामानुजाचार्य की सिर्फ असीम कृपा से उसके हृदय में उन्होंने वो एक जगह दी और जैसे उन्होंने धनुर्धर ने देखा हो पूरी तरह से मोहित हो गया, वो उसकी भक्ति जाग गई और भगवान का पूरी तरह से रामानुजाचार्य का आश्रय ले ली। और उसके बाद उसकी धर्म पत्नी और दोनों इतने बड़े भक्त बन गए और रामानुजाचार्य उनको अपना संग ज्यादा देते थे, तो गृहस्थ थे। अभी पति पत्नी के साथ रहना है ने गृहस्थ जीवन, यानी घर है, धन है, जेवरात है, ये तो मोह के विषय है ना। तो ऐसे दंपति को इतना क्यों देते हैं कि उनके दूसरे जब शिष्य हैं थोड़ा सा उनको शक होने लगा, ये हमारे गुरु महाराज इतना समय इनको क्यों देते हैं। यही नहीं, जब वो कावेरी से स्नान करके आते हैं तो अभी जाते समय वो अपने ब्राह्मण शिष्य जो होते हैं उनके हाथ पकड़ के नदी में उतरते थे और नदी से जब बाहर आते थे यानी नहाने के बाद वो धनुधर की आंग मत धनुधर की हाथ पकड़ते थे, धनुधर की हाथ पकड़कर बाहर आते। तो दूसरे शिष्य सोचते थे क्या चल रहा है, नहाने के बाद एक गृहस्थ की हाथ पकड़ रहा है जो एक अपने स्त्री के अपने पत्नी के साथ रहता है, ये अपने ये सही नहीं है। तो रामानुजाचार्य को पता चला कि मेरे शिष्य कोई अंदर ही अंदर कुछ बात कर रहे हैं, उनको ये सही नहीं लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ। तो उनके जो इस तरह की भ्रम को निकालने के लिए एक दिन उन्होंने सब अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि ये जो धनुर्धर है ना, मैं जानता हूँ ये बहुत ही विषयी है, इसको ये अपनी पत्नी से बहुत आसक्ति है, हाँ तो इसको हम लोग बताएंगे कि ये कितना आसक्ति है, हम दिखा देंगे इसको पता चलेगा। तो मैं ऐसा करना, मैं धनुर्धर को एक समय था, एक शाम का समय था, रात का एक, मैं उसे यहाँ बुला लेता हूँ, तुम लोग घर चले जाना और उसके जो पत्नी के जो गहने हैं ना वो सब चुरा देना, क्योंकि वो उस समय वो सोई रहेगी, मैं तभी उसको इधर बुला लेता हूँ। तो धनुर्धर को इधर बुला लिया और उसके कुछ शिष्य थे वो गए और वो लेटी थी ऐसे, तो उन्होंने धीरे से जाके उसके कुंडल और दूसरे जो यहाँ आस पे धीरे से ना पता चलते उसे सब निकाल दिया गहने। तो जब निकालते समय तो उसने शरीर बदल दिया, तो शरीर ऐसे बदला तो लोग डर गए, भाग गए। तो भाग कर वो लोग भारी चुपचाप देख रहे थे अभी धनुर्धर आएगा, क्योंकि महाराज रामानुजाचार्य ने कहा था कि मैं कुछ समय के बाद धनुर्धर को भेजूंगा, जब धनुर्धर देखेगा क्या हुआ है तभी आपको पता चलेगा इसका कितना आसक्ति है क्या है। तो जैसे धनुर्धर आया अपने पत्नी को देखा, ये क्या है तुम्हारे कुंडल नहीं है हाथ के, ये नहीं है तुम्हें क्या हो गया। तो उसने पत्नी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि आश्रम में कुछ प्रॉब्लम है, शायद उनको पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए मैं ऐसे लेटी थी तो वहाँ से आके उन्होंने ये ले लिया, तो मैं चाहती थी कि लोग दूसरे साइड से यहाँ का ले लिया तो अभी ये साइड से ले लो बोल के मैंने ऐसे शरीर पलट दिया मैंने, लेकिन वो डर के भाग गए। तो धनुर्धर कहने लगा, तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें मालूम नहीं था तुमने कैसे ऐसा क्यों किया, तुम्हें सब देना चाहिए था ना उसे, हमारे लिए क्या जरूरत है। तो ये उनका जो संबंध को देखकर तो शिष्यों को पता चल गया कि ये है, दिखता है, लेकिन यही व्यक्ति एक समय में उनको लग रहा था कि मेरी आंखें इतने खूबसूरत हैं कि इससे ज्यादा कोई है ही नहीं है, लेकिन आज वो इतना बड़ा भगवान की इसमें वैराग्य भी आ गया। तो ये है हमारे शास्त्र में ऐसे कहीं ऐसे ये भावना जो होती है, जो काम भावना इस संसार के, इसका सिर्फ दिशा एक ही होता है कि हमारे इस संसार में बंधन में और ज्यादा बांधते जाता है। और जीवन का लक्ष्य है, हर एक मनुष्य शरीर मिलने के बाद एक लक्ष्य होता है ना, नहीं तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। जी लक्ष्य नहीं है तो फिर जीते क्यों हैं हम? तो लक्ष्य सिर्फ यही है कि इस मोह बंधन से कैसे मुक्त हो जाए। तो हम सोचा, अरे ये तो बहुत कठिन काम है। अरे ये तो सच है कठिन, लेकिन इसको आसान भी किया गया। और किसने किया आसान इसको? 500 साल पहले भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु एक भगवान के भक्त के रूप में अवतरित होते हैं, और वो अवतरित होकर वो जो सच्चा जो प्रेम है, यानी व्रज भक्ति है, गोपियों का प्रेम है, ये 500 साल पहले ही हुआ, और ये सिर्फ ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार होता है। और ये प्रेम सबको बांटने के लिए आता। और ये प्रेम क्या है? ये काम भावना वाला प्रेम नहीं है। शास्त्र में तुलना किया है कि संसार का जो प्रेम हम कहते हैं ना, एक दूजे के लिए हम लोग एक दूसरे के लिए बने गए हैं, ये जो आकर्षण है, ये प्रेम कहते हैं, लेकिन ये लोहे के समान है। और जो शुद्ध प्रेम है वो स्वर्ण गोल्ड के समान, दोनों मेटल है लेकिन अंतर है कि नहीं? एक तो लोहा है और दूसरा है गोल्ड। सो चैतन्य महाप्रभु वो जो प्रेम है, गोल्ड स्वर्ण, स्वर्ण वर्ण में आए थे वो। तो वो आते हैं तो उनके एक शिष्य हैं, उन्होंने उनके बारे में एक ऐसा श्लोक बहुत अच्छा लिखा, सिर्फ हमें बताने के लिए कि ये हर एक व्यक्ति में इस तरह का जो संसार के प्रति जो आकर्षण है वो कैसे कम हो सकता है, और भगवान की ओर आकर्षण कैसे बढ़ सकता है। वो ये श्लोक में उनके एक शिष्य सर्वभौम भट्टाचार्य उन्होंने लिखा उनके लिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुषा पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा अम्बुदुयस्तुम अहम प्रपद्ये। कृपा अम्बुदु का अर्थ है, ये अवतार ऐसे हैं कि कृपा के सागर को लेके आए हो। और वो क्या सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु हम सब? वैराग्य विद्या और भक्ति। भक्ति करो ज्ञान के साथ, अपने आप वैराग्य, कोई ज्यादा बड़ा कुछ तपस्या की जरूरत नहीं है। भक्ति करने से ये चैतन्य महाप्रभु इस संसार में अवतरित हुए। तो इतना आसान कर दिया, यही उपदेश को श्रील प्रभुपाद लेकर गए। हाँ, उनको 1922, अब 101 साल हो रहा है। तो उनको उनके गुरु ने कहा कि ये चैतन्य महाप्रभु के ये जो शिक्षा है इसे तुम्हें पाश्चात्य देश में जाके बता। तो जब प्रभुपाद गए वहां पे, हिप्पियों ने बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत कुछ त्याग कर दिया उन्होंने। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, सीधे रास्ते में आके रहते थे, लेकिन एक नहीं छोड़ा था उन्होंने। परस्पर जो पुरुष स्त्री संघ है, वो जो वासना भाव है वो नहीं छोड़ा था हिप्पियों में, वो उनका फ्रीली चल रहा था। बोलते अरे ये सब क्या है, विवाह विवाह करना ये कुछ नहीं है। जो वहां पे तभी था वो अभी धीरे धीरे हम लोग कैचअप कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम लोग भी पीछे नहीं है आपसे, हम भी है, हम भी करेंगे ऐसे। ये सब विवाह विवाह करना क्या है, फ्री मिक्सिंग, सो कुछ भी हो सकता है, चलता है, दिल में आया वो करने का। तो हिप्पी लोगों ने सब कुछ त्याग किया, ये नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद ने सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ऐसे हिप्पी लोगों ने जो त्याग तो किया था, लेकिन उनको ये देने के बाद वो इतने बड़े वैष्णव बन गए, इतने बड़े अपने मन इंद्रियों को नियंत्रण में संन्यास भरकर इस संसार में कृष्ण भक्ति प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार उन्हें पूरे दुनिया में फैला दिया, और कितने लोगों में ये परिवर्तन कर दिया, और हम भी उसी के अनुयायी। तो इसमें ऐसा नहीं कि आज के श्लोक में कहीं हमारे जो माताएं हैं अभी या स्त्री है उनको लगे अरे क्या है? हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि हम सब एकदम ऐसे के विषय है, माया के मोहित हो जाते हैं। एक तरह से सच है, इसमें तो कुछ है नहीं कि है, वो तो हम देख रहे हैं। लेकिन एक बार प्रभुपाद अपने सुबह के वॉक में इस विषय को चर्चा कर रहे थे। चर्चा करने के बाद उन्होंने मंदिर प्रवेश किया। मंदिर प्रवेश करने के बाद उन्होंने दिखाया, लेकिन ये जो वैष्णवी है तो उन्होंने देखा उनके सामने कुछ ऐसे डिवोटी आ गए, साड़ी पहने हुए थे, वैष्णवी थे, वो आकर प्रभुपाद को ऐसे प्रणाम किया। लेकिन ये जो वैष्णवी है ये तुम्हें इस संसार से मुक्त कर देगी। तो ये नहीं है कि एक स्त्री का जो शक्ति होता है ये सच है, बनाया गया ऐसे, लेकिन उसी स्त्री में ये भी शक्ति है कि वो इस संसार से जो बंधन में उनको भी मुक्त कर सकती है, अपने व्यवहार से, अपने व्यवहार से कर सकती है अगर वो सही तरह से जानती है कि उसमें क्या है। हाँ, कई बार प्रभुपाद से, प्रभुपाद शास्त्र में तो लिखा है कि हम लोग सब माता जैसे हैं, तो फिर ये ब्रह्मचारी लोग हमारे से इतना ऐसे ऐसे क्यों होते हैं, दूर क्यों जाते हैं? तो ये तो है। तो उन्होंने कहा हाँ सच है, सब माँ की तरह, लेकिन क्या तुम माँ की तरह व्यवहार करती हो? अगर माँ की तरह व्यवहार करते हो तो माँ है, नहीं तो फिर इसको याद रखना है कि स्त्री का रूप एक अग्नि की तरह है, पुरुष एक मक्खन की तरह। जब स्त्री पुरुष आता है तो उसका मन बुद्धि सब कुछ बदल जाता है। सो आज के इस भागवत कथा में जो पहली बार आ रहे हैं, बोले ये भागवत कथा में क्या विषय चल रहा है? हम सिर्फ बोल रहे हैं कि जो राजा अग्निद्र, उसने पूर्व चित्त का शरीर को देखकर ऐसे कुछ बोलने लगा उसे मुख से, कोई भी कहेगा यार ये पूरा पागल हो गया है व्यक्ति, ये पूरा मोहित हुआ है। क्योंकि ये सच है कि ऐसा होता है। इसलिए हर एक भक्त को, दोनों को, ऐसे नहीं कि पुरुष स्त्री या स्त्री पुरुष, दोनों साइड से, स्त्री के लिए भी उसी तरह का है कि उसको किस तरह से समझे ज्ञान से और अपने जीवन के लक्ष्य को अर्थात भगवत प्रेम जगाने के लिए कैसे, ये बहुत बड़ा एक ये विरोध हो सकता है, हम कैसे फंस सकते हैं इसे। सब कुछ शुरुआत में आसान लगता है लेकिन बाद में तो, ये हमारा खुद का अनुभव है, हमने देखा है कि कितने ऐसे सारे जो एकदम फ्री होते हैं, आप जानते हैं कि किस तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, नशा करता है, जॉब छूट जाता है, डिवोर्स होता है, पैसे का नुकसान होता है, क्या 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 हो जाता है, वो अपना काम नहीं कर सकता है, जो शुरुआत में लगता है अरे क्या हो गया इसमें, लेकिन वही आगे ऐसे ऐसे फंस के बहुत करे। तो इसके लिए इसको बताया जाता है कि पतन का क्या पतन, और भी जो बड़े बड़े भक्त हैं सीरियस हैं उनके लिए पतन का मतलब है, लेकिन जो समाज में गृहस्थ जीवन में हो या कोई और जीवन, तो इस शक्ति को कुछ कम नहीं समझना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पावर है, उसे भागवतम में हमें चेतावनी थी। तो ये प्रभुपाद एक बार प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में उन्होंने देखा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और इतना अच्छा सब चल रहा है, तो प्रभुपाद ने कहा इसका मतलब मुझे लग रहा है कि न्यूयॉर्क के जो महिलाएं हैं बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। तो किसी को समझ में नहीं आया, प्रभुपाद आप बिल्डिंग इमारतें देख रहे हैं और बोलते हैं यहाँ की महिलाएं खूबसूरत होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि जो कोई भी मेहनत करता है, बहुत ही तीव्रता से काम करता है, उसका मूल कारण है किस तरह से स्त्री को आकर्षित करे और किस तरह से भोग करे। ये प्रभुपाद का तात्पर्य सब वहाँ के देखकर देखा जाए तो सच है। शुरुआत में होता है, शुरुआत में एक आकर्षण होता है, उसके बाद में विवाह हो गया, फिर गृहस्थ जीवन। अगर सही तरह से भगवान की भक्ति केंद्र में नहीं है तो ये बहुत ही स्वाभाविक है, विवाह हो गया तो बच्चे होते, घर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, फिर फर्नीचर के साथ बहुत कुछ चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसे करते 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 पूरा सब कुछ उसी में अपना समय अपना जीवन चला जाता है। और जो जीवन किसके लिए बनाया गया है, समय किसके लिए दिया गया है, उसे हम उससे भूल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्यों इसके बारे में, हाँ जैसे एक भागवतम में जो जनस्य मोह हम अमेति, पूरा जीवन फिर सिर्फ ये मैं और मेरा, ये मेरा है, इसी में केंद्र होता है, लेकिन उसका शुरुआत होता है। तो इसके लिए ये जरूरत नहीं है कि सिर्फ यही सत्य है। हाँ संसार में अगर अज्ञान में यही सत्य है, लेकिन अगर नित्यम भागवत कथा, भक्तों का संग, भगवान ने बताया हुआ जो हमने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, ये सब अगर हम अपने जीवन में अपन स्वीकार करते हैं तो फिर उसके बाद ऐसा ये सही नहीं। सो इस तरह आज के इस विषय में खासकर एक स्त्री पुरुष के आकर्षण में मैं सिर्फ सार बता रहा हूँ कि इसका स्वभाव कैसा है, ये किस तरह से पतन कर सकता है, लेकिन भागवत में उसका स्वभाव के बारे में बताया है। ये कोई ये बस बड़ा बड़ा बात किया जाता है, लेकिन ये भी कुछ एक बस हाथ ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक उस तरह का एक सुख है, उसमें ज़्यादा क्या, उसमें ज़्यादा इतना सब बड़ा बड़ा करके बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ में एक यमुनाचार्य नाम के एक भक्त है, तो वो एक अपने श्लोक में बताते हैं कि जो भक्ति में प्रगति करता है, जब उसके हृदय में भगवान के प्रेम जाग जाता है, तभी वो क्या क्या बोलता है, उसके मुख से क्या आते हैं। यमुनाचार्य ये रामानुजाचार्य के गुरु थे, आज बहुत ही अच्छा पावन दिन है, उसमें उनके भी एक श्लोक है, ये इसमें यहाँ पे हम समाप्त करके कथा। उन्होंने बताया कि यदावधि मम चेत कृष्ण पदारविंद नव नव रसादामानुद्यतरन्तुमासीत् तदावधि बात नारी संगमे स्मर्यमाने भवती मुख विकार शुस्तु निस्तीवनम च। इस श्लोक का अर्थ है यमुनाचार्य जो बहुत बड़े एक भक्ति के मार्ग में लगे थे, लेकिन बाद में वो राजा बन जाते, फिर उनका फिर उसके बाद फिर से वो ये मार्ग में आते हैं, तो तभी क्योंकि राजा थे तभी तो विषय ही थे, वो उन्हें हर तरह के सुख का भोग किया, फिर से उनको याद आता है कि मेरा ब्रह्मचर्य जीवन कैसा था, फिर से वो याद कर कर बहुत बड़े महान भक्त आचार्य बन जाते हैं, तभी वो ये श्लोक बोलते हैं। वो ये कह रहे हैं अभी मैं भगवान के भक्ति में लगा हूं और हर एक क्षण भगवान के कृपा से मेरे हृदय में इतना एक क्या बोलते हैं, एक मधुर अनुभव आ रहा है, मीठा अनुभव आ रहा है, स्वीटनेस प्रेम। तो ऐसे हालत में जब भी मैं पिछले जीवन का याद करता हूं, मैं ऐसा ऐसा मैंने किया था, तो तभी थोड़ा सा भी मेरे को स्मरण होता है कि ऐसा ऐसा नारी संगमे, तो ऐसे याद आते समय मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुंह के अंदर किसी ने कुछ क्या करेला इज व्हाट कड़वा और व्हाट इज इट करेला इज कड़वा, ऐसे किसी ने मुंह में कुछ कड़वा चीज मुंह में डाल दिया था। मुंह में अगर कड़वा चीज डाल दिया तो क्या करते हैं आप, थूक देते हैं। तो बोलते अभी मुझे जब वो स्मरण होता है तो मुझे लगता है कितना तुच्छ है, किसके तुलना से, भगवत प्रेम के तुलना से। सो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन में हम इस तरह से प्रयास भक्तों के संग में करते रहेंगे, तो तभी जब इस विषयों को हम इसके विषयों के संपर्क में आते हैं तो ऐसे विषय अपने आप कम हो जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे भगवद गीता में बताया हाँ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसो वर्जम रसोप्यस्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते, यानी जो परम दृष्ट्वा का आ जाता है। प्रभुपाद के एक शिष्यगण को एक बार किसी ने आके उनको पूछा, एक सन्यासी है, प्रभुपाद के बहुत आज भी सन्यासी है, वो बड़े लीडर हैं, तो उनको आके किसी ने पूछा, ऐसा टेस्ट करना चाहते थे उनको कि आप बड़े बड़े बात कर रहे हैं, क्योंकि पश्चात देश के थे वो, आज भी है सन्यास जीवन और इतने महान भक्त हैं प्रभु। तो उनसे पूछा, स्वामी जी अगर आपको समझो एकांत में कोई नहीं है, अकेले है और सुंदर ऐसे एक स्त्री आपके साथ आती है मिलने के लिए, तो आप क्या करेंगे, कोई नहीं है आसपास, एकांत जगह है, किसी ने ऐसे उनसे, तो उन्होंने जवाब दिया, अरे मैं 56 भोग खा रहा हूं, मैं कुछ मिष्ठा के लिए मैं क्यों जाऊं, मैं एक ऐसे तुलना किया है कि भगवत प्रेम और इस संसार का जो सुख, हम लोग बहुत विचलित हो जाते हैं क्योंकि हमने अनुभव नहीं किया है भगवत प्रेम, हमें अनुभव नहीं किया। लेकिन ऐसी श्रद्धा होना चाहिए कि करते रहेंगे और थोड़ा ऐसे विषयों से थोड़ा संभाल के रहेंगे तो निश्चित 56 भोग का जो अनुभव होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण। समय किसी का कुछ कमेंट्स? अगर मैंने किसी कुछ ऐसा कुछ बोला है जिससे हमारे माताओं को लगा अरे सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों तरफ से ये सच है। और अगर किसी को कुछ बुरा लगा है तो फिर मैं बोलता उसे स्वीकार मत करना आप, लेकिन शास्त्र के अनुसार जो लिखा है उसे हम सब के लिए लागू है, हो पुरुष हो या स्त्री हो, इसमें कुछ भेदभाव नहीं है। लेकिन एक चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। हरे कृष्णा।